नमस्कार, स्वागत है आपका फिर एक बार इतिहास तृतीय पेपर के चौथे अध्याय त्रिपक्षीय संघर्ष में, और आप हैं रुद्रभानु प्रताप के साथ। आइए देखते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष। 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में कन्नौज पर नितांत शक्तिहीन आयुध शासकों का शासन था। वे अपनी समकालीन पूर्वोक्त तीन महाशक्तियों की तुलना में इतनी शक्तिहीन और अक्षम थे कि उनके सामने हर विजेता के सम्मुख नतमस्तक होने के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं था। इसके विपरीत पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट उनकी शक्तिहीनता का लाभ उठाकर कन्नौज पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। कन्नौज पर आधिपत्य के लिए इन तीनों शक्तियों के मध्य संघर्ष को ही त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। यह संघर्ष बड़ी विचित्र एवं रोचक परिस्थितियों में लगभग एक शताब्दी तक चलता रहा और अंततः 9वीं शताब्दी के प्रारंभ में गुर्जर प्रतिहार और कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में सफल हुए। इस त्रिपक्षीय संघर्ष के कारण कन्नौज नगर पर अधिकार करने की आकांक्षा मात्र था। कन्नौज वास्तव में इन तीन महाशक्तियों की महत्वाकांक्षाओं का क्रीड़ा स्थल था। जैसा कि पहले हम कह चुके हैं, गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद कन्नौज वह स्थान हो गया था जो मगध साम्राज्य के इतिहास में कभी पाटलिपुत्र का था। कन्नौज अब उत्तर भारत की राजनीति का धुरी प्रतीक था। अतः समकालीन राजनीति महाशक्तियों द्वारा कन्नौज पर प्रभुत्व स्थापित करने की लालसा बड़ी स्वाभाविक थी। इस काल में कन्नौज के आसपास उत्तर भारत के क्षेत्र मध्य देश कहा जाता था। हर्ष के समय कन्नौज ने उत्तर भारत के एक प्रमुख नगर पर स्थान ग्रहण कर लिया था। गंगा के तट पर स्थित होने के कारण नदी मार्ग से होने वाले व्यापार की दृष्टि से उत्तर एवं पूर्व भारत के महत्वपूर्ण कड़ी थी। कन्नौज का क्षेत्र गंगा और यमुना के मध्य स्थित होने के कारण भारत का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र था। इसके अतिरिक्त पालों और गुर्जर प्रतिहारों दोनों के लिए अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए इससे अधिक उपयुक्त क्षेत्र नहीं हो सकता था। साथ ही राष्ट्रकूटों ने गुर्जर प्रतिहारों के प्रति अपने विरोध और साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं की कीर्ति पताका चारों दिशाओं में फैलाने के लिए इस संघर्ष में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप किया। यह उल्लेखनीय है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर राष्ट्रकूट उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण की पहली शक्ति थे। उन्होंने समकालीन उत्तर भारत की राजनीति में लगभग वही भूमिका निभाई जो 18वीं शताब्दी में मराठों ने निभाई थी। इस त्रिपक्षीय संघर्ष में कन्नौज पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए सर्वाधिक आतुरता गुर्जर प्रतिहारों को थी, क्योंकि इस समय राष्ट्रकूट को समकालीन भारत में अजेय शक्ति हो गए थे। प्रतिहारों पर लगातार प्रहार कर रहे थे। अतः राष्ट्रकूटों के पड़ोस से हटकर वे कन्नौज के सुरक्षित और समृद्ध क्षेत्र की ओर बढ़ने के लिए आकुल थे। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि मालवा पर इन दिनों प्रतिहारों का अधिकार था और मालवा के दक्षिण में राष्ट्रकूटों का अधिकार क्षेत्र था। इस प्रकार दोनों क्षेत्रों में राज्यों की सीमाएँ समान थीं। राष्ट्रकूटों के हाथों पराजित हो जाने एवं उसकी प्रचंड शक्ति से भयभीत होकर सामरिक एवं राजनीतिक कारणों से प्रतिहार कन्नौज पर अधिकार करने के लिए बड़े ही प्रयत्नशील थे। इस त्रिपक्षीय संघर्ष का वास्तविक पहल प्रतिहार नरेश वत्सराज ने की। कन्नौज के आयुध शासक इंद्रायुध को पराजित कर उत्तर भारत में अपनी सत्ता विस्तार प्रारंभ किया। पाल नरेश धर्मपाल ने भी उत्तर भारत पर अपनी प्रभुसत्ता के विस्तार के लिए उतना ही महत्वाकांक्षी था। अतः प्रतिहार वत्सराज एवं धर्मपाल के बीच उत्तर भारत पर शक्ति विस्तार के लिए संघर्ष आरंभ हो गया। इसी दौरान राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव ने उत्तर भारत की प्रभुसत्ता के लिए इस संघर्ष में हस्तक्षेप किया और सर्वप्रथम वत्सराज को युद्ध में पराजित कर उसे राजपूतानी की ओर खदेड़ दिया। इसके बाद ध्रुव ने गंगा यमुना के मध्य कहीं धर्मपाल को पराजित किया। इस प्रकार उत्तर भारत की प्रभुसत्ता के लिए पालों एवं प्रतिहारों एवं राष्ट्रकूटों के मध्य शताब्दी से अधिक समय तक चलने वाले त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ हो गया। राष्ट्रकूटों द्वारा उत्तर भारत की समकालीन राजनीति में हस्तक्षेप का तात्कालिक लाभ धर्मपाल ने उठाया। राष्ट्रकूटों के हाथों पराजित होने के बाद प्रतिहारों की उत्तर भारत पर प्रभुसत्ता के विस्तार की महत्वाकांक्षा कुछ समय के लिए कम हो गई। राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव ऊपर बताई गई विजयों के बाद वापस दक्षिण लौट गया। अब पालों की महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए उत्तर भारत में उपयुक्त अवसर था। परिणामस्वरूप ध्रुव के दक्षिण भारत वापस जाते ही धर्मपाल ने कन्नौज पर आक्रमण करके इंद्रायुध को राज सिंहासन से अपदस्थ कर उसके स्थान पर चक्रायुध को सिंहासनारूढ़ कर दिया। इस प्रकार कन्नौज पर कुछ समय के लिए पालों का आधिपत्य स्थापित हो गया। प्रतिहार इस स्थिति को सहन नहीं कर पाए। परिणामस्वरूप वत्सराज के पुत्र और उत्तराधिकारी नागभट्ट द्वितीय ने चक्रायुध को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया। यह धर्मपाल के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी और दोनों पक्षों में अवश्यंभावी युद्ध की तैयारियां प्रारंभ कर दी। मुंगेर के निकट लड़े गए इस युद्ध में नागभट्ट द्वितीय ने धर्मपाल को बुरी तरह पराजित किया, पर अपने वत्सराज की भांति नागभट्ट की सफलता भी क्षणिक सिद्ध हुई। पालों के विरुद्ध उक्त विजय के कुछ समय पश्चात ही राष्ट्रकूट नरेश गोविंद तृतीय ने नागभट्ट को बुरी तरह परास्त कर कन्नौज पर प्रतिहार सत्ता की स्थापना के उसके स्वप्न को भंग कर दिया। एक राष्ट्रकूट अभिलेख से ऐसा आभास होता है कि धर्मपाल एवं कन्नौज के आयुध शासक चक्रायुध ने अपने समान शत्रु नागभट्ट द्वितीय के विरुद्ध राष्ट्रकूट नरेश गोविंद तृतीय को आमंत्रित किया था। गोविंद तृतीय की प्रतिहारों के विरुद्ध इस विजय के बाद चक्रायुध एवं धर्मपाल ने राष्ट्रकूट नरेश की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए उसके सम्मुख आत्मसमर्पण किया। नागभट्ट द्वितीय के विरुद्ध गोविंद तृतीय की इस विजय की वास्तविक तिथि निर्धारित करना कठिन है, पर अनुमान है कि यह युद्ध 809 या 810 ईस्वी के आसपास हुआ होगा। नागभट्ट द्वितीय की उपयुक्त पराजय से प्रतिहार शक्ति कुछ समय के लिए पतन हो गई। गोविंद तृतीय के दक्षिण वापस जाते ही धर्मपाल और उसके पुत्र देवपाल के लिए उत्तर भारत पर अपनी प्रभुसत्ता का विस्तार करने का क्षेत्र पुनः खुल गया। धर्मपाल की मृत्यु के बाद नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने की महत्वाकांक्षा फिर से जाग उठी और उसने कन्नौज पर अधिकार करके उसे प्रतिहार साम्राज्य की राजधानी बनाया। सौभाग्यवश प्रतिहारों के लिए परिस्थिति अब अनुकूल हो गई थी, क्योंकि राष्ट्रकूट जिन्हें इस त्रिपक्षीय संघर्ष में सबसे निर्णायक भूमिका निभाई थी, इस समय आंतरिक और बाह्य कठिनाइयों के दौर से गुजर रहे थे। समकालीन राष्ट्रकूट नरेश अमोघ वर्ष ने अपने पिता की भांति महान विजेता और सेनानायक नहीं था, वरन वह एक शांतिवादी शासक था। राष्ट्रकूट इस संघर्ष से हट जाने से गुर्जर प्रतिहारों को कन्नौज पर अधिकार करने का अवसर प्राप्त हो गया और वे उत्तर भारत की प्रमुख शक्ति हो गए। परंतु इस संघर्ष की कट्टर समाप्त नहीं हो गई और जैसे कि हम पहले पृष्ठ में देखेंगे कि सीमित रूप से यह संघर्ष 9वीं शताब्दी तक चलता रहा। संघर्ष की सफलता के फलस्वरूप उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार सर्वाधिक प्रभावशाली हो गए।